शांति प्रेमी सब गृहस्थ सज्जन सन्नारियों, शांति किसे नहीं चाहिए, सभी सुख अशांत हैं, सभी बेचैन हैं, सभी दुखियारे हैं, किसी को किसी बात का दुख, किसी को किसी बात का दुख, आज किसी बात का दुख तो कल किसी दूसरी बात का दुख, बेचारा गृहस्थ किस कदर दुखों से संतप्त रहता है, अभाव में हो तो स्वस्थ या अभाव के कारण बड़ा दुखियारा है। पर जानता हूं जिन्हें कोई अभाव नहीं, घर में बहुत समृद्धि है, फिर भी सुख शांति तो नहीं है, बड़ी बेचैनी है, बड़ी सुखी है। गृहस्थ को सुख शांति चाहिए, समृद्धि आवश्यक है, लेकिन केवल समृद्ध हो जाने से ही शांति नहीं आती। पश्चिम के देश आज हमसे कहीं ज्यादा समृद्ध हैं, कहीं ज्यादा धनवान हैं, लेकिन शांति जरा सी भी नहीं है। धनी से धनी व्यक्ति को रात को नींद नहीं आती तो सोने की गोलियां लेकर सोता है। उन देशों में तनो मनो नहीं तनो सोने की गोलियां रोज दिखती हैं, तनो ट्रांक्यूलाइजिस रोज दिखते हैं, और हम देखते हैं ऐसी हालत अपनी होने लगे। कितने लोग स्लीपिंग पिल्स ले लेकर सोते हैं, कितने लोग ट्रांक्यूलाइजिस लेकर के सोते हैं। धन है, समृद्धि है, सब कुछ है, पर शांति नहीं है। क्यों नहीं है? शांत होने के जो तरीके थे वो खो गए थे। भारत तो बहुत बड़ा समृद्धिशाली देश था, केवल भौतिक संपदा में ही समृद्धिशाली नहीं था, अध्यात्म में बड़ा समृद्धिशाली था। जैसे आज भौतिक संपदा के लिए लोग पश्चिम के देशों की ओर देखते हैं, वैसे ही कभी भारत को भौतिक संपदा के लिए ही नहीं, आध्यात्मिक संपदा के लिए भी बड़े सम्मान से देखा जाता था, क्योंकि देश में दोनों बातें थी, समृद्धि भी थी और आध्यात्मिक शांति भी थी। दोनों खो गए थे। भाग दौड़ शुरू हुई समृद्धि के लिए, अच्छी बात है, समृद्धि चाहिए। गृहस्थ कंगाल होता है तो सुखी नहीं रह सकता, देश कंगाल होता है तो देश सुखी नहीं रह सकता, धर्म हमें कंगाली नहीं सिखाता। लेकिन केवल भौतिक संपदा ही प्राप्त कर लेंगे और फिर तनो ट्रांक्यूलाइजेस रोज का रोज कंज्यूम करेंगे, स्लीपिंग पिल्स कंज्यूम करेंगे, तो संपदा हमारे क्या काम आई? तो पश्चिम की तरह हम भी दुखियारे हो जाएंगे। भारत के पास ये आध्यात्मिक शांति का जो तरीका था उसे खो गए थे, वो जादू और वो उपदेशों से नहीं जागता है, वो प्रवचनों से नहीं जागता है, वो धर्म ग्रंथों को पढ़ने से नहीं जागता है, वो चर्चा परिचर्चा से नहीं जानता है। उसके लिए मेहनत करनी होती है, परिश्रम करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है। बातें तो बहुत करते हैं अध्यात्म की, सारा देश अध्यात्म की बातों में کتنا مقبول ہے. لیکن آدھیاتم جیون میں کیسے اترے اسے بھول گئے, اور بڑا کارن یہ ہوا کہ شکشا سے آدھیاتم کھو دیا. یہ ودیالے ایسے دیش میں ہزاروں لاکھوں ودیالے جہاں بچے پڑھائے جاتے ہیں, ان کو کیسے لکھنا سکھایا جاتا ہے, آگے جا کر کے بہت ان کے وگیان سکھایا جاتا ہے, ہر طرح کی بہت ہی شکشا دی جاتی ہے, اور دھرم کی شکشا نہیں دی جاتی. یہ دیش کا درباگیہ ہوا. ہم نہیں جانتے اس پستکالے اس ودیالے میں دھرم کی کتنی شکشا دی جاتی ہے, لیکن برہم دیش سے یہاں آنے پر یہ جان کر بڑا دکھ ہوا کہ بھارت کی پاٹھشالاؤں میں دھرم کو اس لیے دور رکھا گیا کہ ہمارا دیش دھرم نرپیکش دیش ہے, سیکولر گورنمنٹ ہے. تو سیکولر گورنمنٹ ہے تو دھرم کیسے سکھائے؟ بڑی بھول ہوئی. سرکار کبھی دھرم نرپیکش ہو نہیں سکتی. کہنا یوں چاہتے تھے کہ سرکار سمپردائے نرپیکش ہے, کسی سمپردائے کی طرف جاری نہیں کرے گی, کسی سمپردائے میں لوگوں کو باندھنے کا کام سرکار نہیں کرے گی. دھرم نرپیکش نہیں, دھرم ساپیکش ہو گئی. کٹھنائی سب سے بڑی یہ ہو گئی ہمارے دیش کی کہ دھرم اور سمپردائے یہ دونوں ہمارے لیے پریائے واچی شبد ہو گئے. پچھلے 20 ورسوں سے دیکھتا ہوں کہ جہاں کسی سمودائے میں سماج میں دھرم شبد کا پریوگ کرتا ہوں تو لوگوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں, یہ آدمی اب کون سے دھرم کی بات کرے گا, ہندو دھرم کی بات کرے گا کہ بودھ دھرم کی بات کرے گا, جین دھرم کی بات کرے گا کہ مسلم دھرم کی, کہ عیسائی دھرم کی, کہ سکھ دھرم کی, کہ فارسی دھرم کی. بڑا آشچری ہوتا ہے, کیا دھرم اپنے آپ میں اکیلا کچھ نہیں؟ کیا اس کا کوئی استتو ہی نہیں؟ جو دیش اتنا دھرم وان تھا, آج اس دیش میں ہندو دھرم پردھان ہو گیا, بودھ دھرم پردھان ہو گیا, جین دھرم پردھان ہو گیا, مسلم دھرم پردھان ہو گیا, عیسائی دھرم, سکھ دھرم, پارسی دھرم, یہودی دھرم پردھان ہو گیا. دھرم گون ہو گیا, دھرم کی ضرورت نہیں. بچوں کو بچپن سے یہ بات سکھائی جاتی ہے, ہندو پریوار میں جنما ہے تو اسے سکھایا جاتا ہے دیش تجھے کٹر ہندو بننا ہے, کٹر ہندو بننا, پران چلے جائیں لیکن ترا ہندو دھرم میں چھوٹ جائے. مسلم دھرم جنما ہے تو بچپن سے بھی سکھایا جاتا ہے تجھے کٹر مسلمان بننا ہے, تیری پران چلے جائیں پر تو مسلمان دھرم مت چھوڑ دینا. ایسے ہی جین کٹر جینی بننا چاہتا ہے, بودھ کٹر بودھ بننا چاہتا ہے, سکھ کٹر سکھ بننا چاہتا ہے. کیا ہو گیا اس دیش کو؟ کوئی دھارمک نہیں بننا چاہتا, کوئی نہیں کہتا کہ میں کٹر دھارمک بنوں گا. بچوں کو نہیں سکھایا جاتا کہ تمہیں کٹر دھارمک بننا ہے. یہ بڑا کٹھن ہے. کٹر ہندو بننا بڑا آسان ہے, کٹر مسلمان بننا بڑا آسان ہے, کٹر سکھ بننا, عیسائی بننا بڑا آسان ہے, کٹر دھارمک بننا بڑا کٹھن ہے. کیا دھارمک ہوتا ہے جس کے جیون میں دھرم اتر گیا, جس کے ویوہار میں دھرم اتر گیا, جس کے سارے چال چلن میں دھرم اتر گیا, جس کا جیون سداچار سے بھر گیا, جس کا جیون تین سداچار سے بھر گیا, وہ آدمی دھارمک ہے. وہ اپنے کو مسلمان کہیں یا جین کہیں یا ہندو کہیں یا بودھ کہیں یا عیسائی کہیں, کچھ فرق نہیں پڑتا. اس کا جیون کہتا ہے کہ یہ ویکتی دھارمک ویکتی ہے, یہ ویکتی دھارمک ویکتی ہے, شریر اور وانی سے کوئی ایسا دشکرم نہیں کرتا जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग हो जाए, ऐसा काम नहीं करेगा तो धार्मिक स्थिति है। वो हत्या नहीं करेगा, हत्या करेगा तो अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होगी। वो चोरी नहीं करेगा, चोरी करेगा तो अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होगी। वो व्यभिचार नहीं करेगा, व्यभिचार करेगा तो अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होगी। वो झूठ बोल के किसी को नहीं छेड़ेगा, वो कड़वी बात बोल करके किसी का जी नहीं दुखाएगा, वो चुगली की बात कह के किसी का जी नहीं दुखाएगा, वो परनिंदा की बात कह के किसी का जी नहीं दुखाएगा, वो नशा पता करके किसी की हानि नहीं करेगा। तो धर्मवान हो गया। वो अपने को हिंदू कहता फिरे, वो अपने को जैन कहता फिरे, बौद्ध कहता फिरे, ईसाई कहता फिरे, पारसी कहता फिरे, सिख कहता फिरे, फर्क पड़ा। अच्छा आदमी है ये, इसका कार्यचरण अच्छा है, इसका व्यवहार अच्छा है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती है। ये बात हमें बचपन नहीं सिखाई जाती थी, हमारी सारी पाठशालाएं गुरुकुल कहलाती थी। क्या गुरुकुल होता है? क्या सिखाने वाला गुरु होता है, माने गौरवपूर्ण व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में धर्म समा गया, ऐसा व्यक्ति धर्म ही सिखाएगा। सारे बच्चे उसके कुल के बच्चे हैं, ऐसा ऋषिकुल होता था, ऐसा गुरुकुल होता था। क्यों आज नहीं हो सकता? क्यों धर्म को हिंदू धर्म कह के सिखाया जाए, क्यों धर्म को बौद्ध धर्म कह के सिखाया जाए, या ईसाई धर्म या जैन धर्म कह के सिखाया जाए? धर्म को धर्म कह के सिखाया जाए तो सरकार सेक्युलर रहे, हमारा क्या बिगड़ता है? अच्छी बात है, सरकार को सेक्युलर होना ही चाहिए, सरकार को संप्रदाय निरपेक्ष होना ही चाहिए। जो सरकार किसी एक संप्रदाय का पक्षपात लेने लगी, बड़ी गई गुजरी सरकार है, वो देश का कल्याण नहीं कर सकेगी, समाज का कल्याण नहीं कर सकेगी, राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकेगी, लोगों में भेदभाव पैदा करेगी। तो सरकार को तो संप्रदाय निरपेक्ष होना ही चाहिए, धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष होना चाहिए। और है धर्म सापेक्ष, लेकिन पागलपन से शिक्षा में से क्यों निकाल दिया गया, ये बहुत बड़ी भूल हो गई। सरकार का सारा विधान, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन धर्म सापेक्ष ही है। देश का पीनल कोड क्या कहता है? कोई व्यक्ति हत्या करता है तो सरकार उसे दंड देती है ना? कोई आदमी चोरी करता है, सरकार उसे दंड देती है ना? कोई आदमी झूठ बोल के किसी को ठगता है, सरकार उसे दंड देती है ना? कोई व्यभिचार करता है, सरकार दंड देती है ना? कोई नशा पता करके समाज की शांति भंग करता है, सरकार दंड देती है ना? तो धर्म सापेक्ष हो गई ना, धर्म देते शिकर के पटनाई जी हो गई। देश की बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया कि धर्म और संप्रदाय इन दोनों का भेद भूल गए, एक ही मान लिया दोनों। तो हिंदू बड़ा गर्व करता है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान बड़ा गर्व करता है कि मुसलमान हूँ, बौद्ध बड़ा गर्व करता है मैं बौद्ध हूँ, जैन बड़ा गर्व करता है मैं जैन हूँ, सिख बड़ा गर्व करता है मैं सिख हूँ। कोई ये गर्व नहीं करता कि मैं धार्मिक हूँ। सिखाया ही नहीं गया, हमें बांट दिया गया, हिंदू धर्म का अलग टुकड़ा, बौद्ध धर्म का अलग टुकड़ा, जैन धर्म का अलग टुकड़ा, ईसाई धर्म का अलग टुकड़ा, ऐसे ऐसे त्योहार मना लिया करो तो तुम इस संप्रदाय के व्यक्ति, ऐसे ऐसे त्योहार मनाने वाले इस संप्रदाय के व्यक्ति, ऐसे ऐसे व्रत उपवास करने वाले इस संप्रदाय के व्यक्ति, ऐसे ऐसे व्रत उपवास करने वाले इस संप्रदाय के व्यक्ति, ऐसे ऐसे पूजा पाठ करने वाले इस संप्रदाय के व्यक्ति, ऐसे ऐसे पूजा पाठ करने वाले उस संप्रदाय के व्यक्ति, ऐसा ऐसा कर्म कांड करने वाले इस संप्रदाय के व्यक्ति, ऐसे ऐसे कर्म कांड करने वाले इस संप्रदाय के व्यक्ति, ऐसी ऐसी भेषभूषा वाले इस संप्रदाय के व्यक्ति, ऐसी ऐसी भेषभूषा वाले इस संप्रदाय के व्यक्ति, ऐसी ऐसी दार्शनिक मान्यता को मानने वाले इस संप्रदाय के व्यक्ति, ऐसी ऐसी दार्शनिक मान्यता को मानने वाले उस संप्रदाय के व्यक्ति। अरे इन सारी बातों का धर्म के जरा कभी संबंध नहीं, दूर पड़े कभी संबंध नहीं, और इसको हमने धर्म मान लिया। तो बच्चों को सचमुच क्या सिखाएंगे? स्कूलों में बच्चों को यही सिखाना शुरू कर दे कि देश तुझे ऐसा पूजा पाठ करना चाहिए, तुझे ऐसे कर्मकांड करने चाहिए, तो हिंदू है तो ऐसी लंबी टोपी रखनी चाहिए, तो मुसलमान है तो ऐसी लंबी दाढ़ी रखनी चाहिए, तो सिख है तो तुझे लंबे केस रखने चाहिए, तुझको ऐसे कपड़े, ऐसी व्यवहार, ऐसी बात जो बाहर बाहर से दिखावा है, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए। तो सचमुच हिंदू धर्म सिखा रहे हैं, बौद्ध धर्म सिखा रहे हैं, जैन धर्म सिखा रहे हैं, ईसाई धर्म सिखा रहे हैं, धर्म नहीं सिखा रहे हैं। बच्चे मुझे सिखाए कि तुम्हें हत्या नहीं करनी है, तुम्हें चोरी नहीं करनी है, तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, कड़वी बात नहीं बोलनी है, चुगली की बात नहीं बोलनी है, पगलिंदा की बात नहीं बोलनी है, तुम्हें नशा पता नहीं करना है। तो धर्म की बात हुई ना, वो अपने व्रत त्योहार चाहे जैसे मनाए, हिंदुओं के मनाए, मुसलमान मुसलमानों के मनाए, सिख सिखों के मनाए, वो अपने पूजा पाठ ऐसी करे वैसी करे, अपनी दाखिल मान्यता ऐसी माने वैसी माने, अपने मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए, कहीं जाए। मूल बात तो धर्म की ये कि शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो अन्य लोगों की सुख शांति भंग करता है। ये पाठ बचपन से बच्चों को सिखा दें, आसान है सिखाना। बचपन से हम बच्चों को देखो तुम्हें ये पांच व्रत पालने होंगे, बच्चा उसे याद कर लेगा। अभी छोटी उम्र है, मन बड़ा कोमल है, जो माँ बाप कहेंगे पाठशाला में जो बात सुनाई जाएगी उसे अच्छी लगेगी, उसे स्वीकार करेगा। लेकिन फिर देखिएगा ये उपदेश देने वाले चाहे माँ बाप है, चाहे मेरे स्कूल के टीचर हैं, ये खुद तो पालन नहीं करते ना। एक व्यापारी अपने बच्चे को कहता है तुम्हें रोज सच बोलना चाहिए, झूठ मत बोलना, झूठ बोलने से बहुत पाप लगता है। बच्चे के मन तो बड़ी अच्छी साफ होती है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बाप कहता है ना। और बाप की दुकान पर किसी छुट्टी के दिन बैठता है तो देखता है बाप सुबह से झूठ बोलना शुरू करता है, शाम तक झूठ ही बोले जाता है। तो बच्चा उसकी ओर देखता है कि हमें तो कहता है सच बोलो, तुम्हें तो झूठ ही बोलता है। माँ उसे कहती है देख हमेशा सच बोला कर, झूठ नहीं बोलना। और उसके लिए टेलीफोन आता है, तेरी माँ को बुला, अरे कह दे उसको घर पे नहीं है। बच्चा उसके मुँह की ओर देखता है, घर पे नहीं है, घर पे है ना, घर पे कहते नहीं, माँ कहती हूँ ना बोल के घर पे नहीं है। धीरे धीरे बच्चे के बाद समझ में आने लगती है कि भाई ये पाठ को अपनी जगह है और कर्म अपनी जगह है, धर्म अलग है, कर्म अलग है, धर्म और कर्म के दो कंपार्टमेंट है अलग अलग। धर्म की बात ही किया करो, धर्म की बात ही सुना करो, धर्म को पालन मत करो। पालन करोगे तो तुम सुखी कैसे होगे, तुम धनवान कैसे होगे, तुम्हारे घर में पैसा कैसे आएगा। बाप जब उसमें झूठ बोलता है तो पैसा आता है ना उसके पास, झूठ नहीं बोलता तो पैसा नहीं आएगा ना। झूठ बोल, कर्म में झूठ और उपदेश में सच, तो बचपन से ही बच्चे के समझ में आने लगता है ये कोरे उपदेश है, इनको पालन करना जरूरी नहीं है। तो पहली बात यह कि घर में माता पिता धर्म का पालन नहीं करेंगे और चाहेंगे कि हमारे बच्चे धर्मवान बन जाए तो होने वाली बात नहीं है। माँ बाप इस बात में खुश हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर मुसलमान हूँ, मैं कट्टर जैन हूँ, मैं कट्टर बौद्ध हूँ, मैं कट्टर ईसाई हूँ, क्योंकि उनके ऐसे ऐसे जो त्योहार होते हैं सब मनाता हूँ, उनके जैसे जैसे व्रत होते हैं सब करता हूँ, उनके जो पूजा पाठ है सब करता हूँ, ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ। सदाचार का पालन करना जरूरी नहीं है, कट्टर हिंदू बनने के लिए सदाचार का पालन करना जरूरी नहीं है, कट्टर मुसलमान बनने के लिए कट्टर बौद्ध कट्टर ईसाई कोई जरूरी नहीं है। ये कर्म कांड पूरे कर लो पर तुम कट्टर हिंदू हो गए। ये कर्म कांड पूरे कर लो तुम सच्चे मुसलमान हो गए। ऐसे अपने बच्चों को धर्म सिखाएंगे कठिन बात हो गई है, तो इस कठिन बात को कैसे सुधारें? अगर बच्चों को केवल उपदेश देकर ही रह जाए तो बात बनती है, उनके सामने एक उदाहरण होना चाहिए। स्कूल में टीचर कहती है कि देखो तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, और थोड़ी देर के बाद कोई फैस मिलती है गुस्से के मारे, तो बच्चा देखता है कि देखो ये उपदेश को देती है तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, और खुद इसने गुस्से के मारे बैंक देती है। अच्छा, ये भी उपदेश के बाद गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये उपदेश के बाद करने के बाद नहीं। अरे सारी बात तुम्हें जब सिखाने वालों के जीवन में नहीं उतरेगी तो बच्चों के जीवन में कैसे उतरेगी? तो पहली बात तो जिनको धर्म सिखाना और क्यों सिखाना है, शांति नहीं मिलेगी बिना जीवन में धर्म उतरे हुए। हजार संपदा आ जाए शांति नहीं आए, कहोगे खूब आ जाए, सीढ़ियों पर नहीं चढ़ना पड़ेगा, लिफ्ट लगा लेंगे चढ़ जाएंगे लिफ्ट, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ से 10 कदम भी चलना हो तो कार सामने होगी, कार में बैठ के चले जाए, कहीं गर्मी में लग जाए इसके लिए एयर कंडीशन लगा के बैठ जाएंगे, ये सारी सुविधा आ जाएगी। शांति कहाँ से आएगी? सुविधा में और शांति में जमीन आसमान का फर्क। सारी सुविधाएं होते हुए भी आदमी बेचैन रहता है, बड़ा बेचैन रहता है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये मेरी मनचाही बात क्यों नहीं हुई, ये अनचाही बात क्यों हो गई, अरे सारे जीवन भर यही करता है, मेरी मनचाही नहीं हुई, मेरी मनचाही नहीं हुई, उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया, दुखी दुखी है ना, क्योंकि सीखा ही नहीं धर्म पालन करना। उपदेश बहुत, उपदेश देता भी बहुत है, उपदेश सुनता भी बहुत है, पालन नहीं करता, कैसे करे? करने की विद्या लुप्त हो गई, मन ही वश में नहीं हो तो कैसे पालन करे? एक शराबी आदमी नहीं चाहता कि उसका बच्चा शराबी बने, नहीं चाहता, क्योंकि जानता है शराब पीना, लेकिन मुझे लत लग गई मैं क्या करूं, अपने बच्चे को बचाना चाहता। एक जुआरी आदमी नहीं चाहता कि उसका बच्चा जुआ खेले, उससे दूर रखना चाहता है। एक व्यभिचारी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके बच्चे व्यभिचारी बन जाए, दूर रखना चाहता है, लेकिन खुद नहीं निकल पाता, उन व्यसनों से खुद नहीं निकल पाता, उन आसक्तियों से खुद नहीं निकल पाता, कैसे बच्चे को दूर रखेगा? तो ये विद्या पहले माँ बाप को सीखनी होगी, स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं को सीखनी होगी, अपने मन को कैसे वश में कर। जिसका मन वश में नहीं वो बुद्धि के स्तर पर हजार समझता है कि हमको सदाचार का जीवन जीना है, हमको दुराचार का जीवन नहीं जीना, ये खूब समझता है, स्वीकार भी करता है, फिर भी मन वश में नहीं है तो सदाचार से दूर रहता है, दुराचार का ही जीवन जीता है, क्योंकि मन का मालिक है। तो हमारे यहाँ देश में केवल उपदेश नहीं हुआ करते, धर्म शब्द का अर्थ नहीं है कि उपदेश मत दो, धारण करो, धारण की धर्म, धारण करता है तो धर्म है, धारण नहीं करता तो धर्म नहीं है, पूरी बात ही। हमारे देश में धर्म को पूरी बात ही कोई मानता ही नहीं था, धारण करने को ही धर्म मानते थे, अब तो बात करने को धर्म मानते हैं, धारण करने की जरूरत नहीं, खूब बातें करो, हम भी आ गए घंटे भर बोल जाएंगे, बहुत अच्छा बोला, देखो धर्म कितना समझाया हमको। बोलने वाला अगर ये ना सोचेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको मैं धारण कर रहा हूँ कि नहीं, सुनने वाले ये नहीं सोचेंगे कि आज जो बात सुने उसको कैसे धारण करें, तो तरीका होना चाहिए, हम भी सीखे उस तरीके को। वाणी विलास बुद्धि विलास, वाणी विलास बुद्धि विलास, अरे सारा देश डूब गया इस वाणी विलास में, बुद्धि विलास में। भारत जैसा कोई देश दुनिया में नहीं जहाँ धर्म की चर्चा न होती हो, कितनी बातें धर्म ही धर्म की, धर्म ही धर्म की, पुस्तकें देखो तो ढेर लग गया धर्म की पुस्तकों का, और लोगों को देखो तो कोई धारण नहीं करता, क्योंकि बोलने में भी रस है, सुनने में भी रस है, पढ़ने में भी रस है, चर्चा करने में भी रस है, धारण करना भूल गए ना। तो धारण कैसे करें, उसकी विद्या भारत में हुआ करती थी,
और वो शुद्ध विद्या होती थी, संप्रदाय की विद्या नहीं। ये बात भारत के लोगों को जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी, सारी विद्यालयों में सही माने में ऋषि कुल आरंभ हो जाएगा, ऋषियों का आश्रम होने लगेगा। वहाँ पर सूर्य सदाचार केवल उपदेश की बात नहीं होगी, जीवन में कैसे उतार, मन को कैसे वश में करें। बहुत तरीके होते हैं मन को वश में करने के, थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ जाओ और जिस किसी देवी में, देवता में, ईश्वर में, ब्रह्म में, किसी महापुरुष में, किसी संत में बड़ी श्रद्धा हो, उसका नाम लेना शुरू कर दो। भीतर ही भीतर बार 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 उसका नाम उच्चारण करो, बार बार नाम जप करो, जपते 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 मन शांत होने लगेगा, मन एकाग्र होने लगेगा, मन के मालिक हो गए। और एक तरीका सिखाया गया कि जिस किसी देवी, देवता, ईश्वर, ब्रह्म, अल्लाह मियां, कोई कोई संत, कोई महापुरुष, जिस किसी के प्रति श्रद्धा हो तो उसका कोई रूप का ध्यान करो, उसकी आकृति का ध्यान करो, बंद आंखों के सामने कल्पना करो, ऐसा हमारा देवता है, ऐसा हमारा ईश्वर है। बार बार उसका ध्यान करते 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 मन एकाग्र हो जाएगा, उनके मालिक हो जाओगे। लेकिन फिर संप्रदाय की बात हुई, अगर संप्रदाय का अपना अपना ईश्वर, अलग अलग ईश्वर सब परमात्मा सब क्या है, अपने अपने देवी, अपने अपने देवता, अपने अपने संत, तो किसी एक संप्रदाय के ईश्वर का नाम दूसरा संप्रदाय वाला कैसे लेगा। स्कूल में ये पढ़ाया जाए कि तुम थोड़ी देर राम बंद करके राम 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 बोलो, तो जो मुस्लिम बच्चे होंगे राम राम क्यों बोले भाई, हमको अल्लाह अल्लाह बोलना सिखाओ तो हम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। जो ईसाई बच्चा होगा हमको गॉड गॉड बोलना सिखाओ तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। जो जैन बच्चा होगा वो हमको अरन भरन महावीर महावीर बोलना सिखाओ तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। जो बुद्ध होगा हमको बुद्ध बुद्ध बोलना सिखाओ तो, अरे ये संप्रदाय की बात हो गई ना, फिर झगड़े की बात। तो हमारे देश में एक विद्या सिखाई गई जिसका संप्रदाय से कोई लेन देन नहीं, हर बच्चे को, बूढ़े को, औरत को, मर्द को यही सिखाया जाता था, आप बंद करके अपने सांस को जान, सांस आता है सांस जाता है, बस इसको जानते हैं, सांस आ रहा है तो हमें जान लिया आ रहा है, सांस जा रहा है हमें जान लिया जा रहा है, जैसा भी सांस है, लंबा है तो जान लिया लंबा है, उठा है तो जान लिया उठा है। सांस की कसरत नहीं करनी सिखाई, सांस को नियंत्रण करना नहीं सिखाया, प्राणायाम नहीं सिखाया, वो बिल्कुल अलग विद्या, ये बिल्कुल अलग विद्या। केवल पहरेदार बन जाओ अपने सांस के, आता है तो जान लो आता है, जाता है तो जान लो जाता है, भारी है तो जान लो भारी है, हल्का है तो जान लो हल्का है, कि लंबा है कि ऊंचा है, कि बाई नाक से गुजर रहा है कि दाहिनी नाक से गुजर रहा है। बात तो बड़ी अजीब सी लगी, अरे इसको देख के क्या मिलेगा, ये तो आ ही रहा है, हम न देखे तो भी आ रहा है, हम न देखे तो भी जा रहा है, बाबा इसको क्या देखे, ये भी कोई बात है। लेकिन बड़े समझदार थे हमारे देश के ऋषि, बड़े समझदार थे हमारे देश के महापुरुष, उन्होंने ये विद्या क्यों सीखा, इसलिए किसी संप्रदाय में नहीं बदलोगे। सांस को हर एक देख सकता है, हिंदू का सांस भी देखा ही, मुसलमान का सांस भी देखा ही, बौद्ध का, जैन का, ईसाई का, कोई फर्क नहीं, हम किसी सांस को नहीं कह सकते ये तो अब के द्वारा ही हिंदू सांस आ रहा है, ये अब के मुस्लिम सांस आना शुरू हो गया, ये इसको जैन सांस आता है, इसको बौद्ध सांस आता है, ऐसा नहीं होता है। सांस तो सांस है, सारी जमीन बात है, सबकी एक जैसी बात है। तो सबसे बड़ा कारण तो ये कि केवल सांस को देखना शुरू करो ताकि किसी संप्रदाय से नहीं बंधोगे। तो आज की जैसी सरकार होगी, सेक्युलर सरकार होगी, जो कहती है कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, हम कहते हैं तुम संप्रदाय निरपेक्ष हो। अच्छा बाबा, अपने को धर्म निरपेक्ष बहुत है, और बच्चों को ये तो सीखने दो कि सांस आता है सांस जाता है, माँ बापों को भी ये तो सीखने दो कि सांस आता है सांस जाता है। देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे तो एक ऐसा आलम्बन मिल गया जिस आलम्बन के सहारे मन सीखना शुरू हो गया, मन सीखना शुरू हो गया तो धीरे धीरे मन के मालिक होने लगे। एक बड़ी बात हुई, इसके आगे बढ़ेंगे तो और बड़ी बात हो जाएगी। आदमी को ये देखना है कि हमको कहा गया तो हत्या मत कर, लेकिन जब किसी को गुस्सा आ जाता तो हमको हत्या कर देते थे, तो वो मूल बात नहीं कि हमको गुस्सा ना आए, हमने क्रोध नहीं जागे, हमने द्वेष नहीं जागे, हमने दुर्भावना नहीं जागे, हमको कहा गया चोरी मत कर,
बड़ी चीज बड़ी अच्छी लगी, हमने लोग जाके हमने चोरी कर ली, हमको कहा गया विचार मत कर और वासना जाके हमने विचार कर लिया। अरे भाई मत कर मत कर मत कर तो सब कहते हैं, पर कैसे मत कर। अच्छा मन कमारी भी हो गए तो भी क्या हुआ, जो विकार जाएगा वो सिर पर ऐसा सवार हो गया कि मन के सारी मल के घड़ी रह गई और हमको जो नहीं करना था हमको कर गए। तो इसलिए हमारे देश के महापुरुषों ने, संतों ने, सत्पुरुषों ने ये सिखाया कि मन को निर्मल करना थे, केवल वश में करना है, निर्मल हो, उसमें विकार नहीं आए, आए तो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, कोई विकार तेरे सिर पर सवार नहीं हो, उसको पागल नहीं करा दे। विकार कैसे दूर करें, तो उसके लिए देखना सिखाया कि विकार कहाँ जागता है। अरे देख तेरे भीतर मन में विकार कहाँ जागा, देखना ही भूल गए ना, किसी ने हमें गाली दी, हमें क्रोध आ गया, अब क्रोध कहाँ जागा जो नहीं देखते, किसने गाली दी, हमारे लिए जितने गाली थी वो प्रमुख हो गया, बार बार उसी का चिंतन गाली दी, देखो उसने गाली दी, देखो उसने गाली दी, बार बार उसका चिंतन करते हैं, मानो उस गाली को ही देखते हैं, गाली देने वाले को देखते हैं, तेरे भीतर क्रोध जागा उसको नहीं देखता ना, क्योंकि देखना आता ही नहीं ना, कैसे देखे, क्रोध तो फिर पर ऐसे भूत की तरह सवार होगा तो कैसे देखे, जितने गाली थी वो खूब दिखता है, इसलिए गाली थी, 5 वर्ष की याद रखेगा, 10 वर्ष उसने गाली, उसने मेरा उस वक्त अपमान किया था, बदला लेके छोड़ूंगा, खूब याद रखता है, अरे तेरे भीतर क्रोध जागता है उसको नहीं देखता है ना, तुझे पता ही नहीं ना कैसे क्रोध जाता है, तेरे भीतर वासना जाएगी तुझे पता ही नहीं लगा कैसे वासना जाएगी, तुझसे सवार हो गई, तेरे अंदर भय ज्यादा भय से सवार हो गया, तेरे अंदर जो विकार ज्यादा तेरे से सवार हो गया, वो तूने कहाँ देखा, तो देश के संतों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने उसे देखना सिखाया, उसे देखने के लिए सांस देखना सिखाया। जो आदमी अपना सांस देखना शुरू कर देता है शुद्ध सांस, उसके साथ कोई शब्द नहीं जोड़ेगा, उसके साथ कोई रूप कोई आकृति नहीं जोड़ेगा, एक वैज्ञानिक की तरह अपने भीतर ये माइंड और मैटर इनका इंटरेक्शन कैसे होगा, माइंड कैसे काम करता है, कैसे बॉडी पर उसका इन्फ्लुएंस होता है, कैसे बॉडी के इन्फ्लुएंस होने पर कैसे माइंड से रिएक्ट करता है, ये सारा का सारा करंट और अंडर करंट एक्शन और रिएक्शन उसको देख करके अपने विकारों से मुक्ति पा सकता है। सांस देखेगा, शुद्ध सांस देखेगा तो बड़ी जल्दी ये बात समझ में आने लगेगी कि जब जब मेरे मन में कोई विकार जागता है, क्रोध जागे कि द्वेष जागे कि ईर्ष्या जागे कि भय जागे कि वासना जागे कि अहंकार जागे, कोई विकार जागे, सांस अपने स्वाभाविक स्तर को दे, सांस स्वाभाविक रह नहीं सकता, तेज हो जाएगा, भारी हो जाएगा, और जैसे ही विकार दूर हुआ सांस फिर वैसा का वैसा स्वाभाविक हो गया। अरे तो इन विकारों का मेरे सांस से बहुत गहरा संबंध है, इसलिए देश के ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने सांस का दर्शन करना सिखाया कि सांस को देखना थी, सांस को देखते तू अपने मन को देखने लगेगा और मन को देखते मन के विकारों को देखने लगेगा, और जब देखने लगेगा तो भीतर से जाग उठे, अब तो भीतर से सोए है ना, जाग जागे, और जब भीतर से जाग गया उसने विकार नहीं जागते, उसने विकार जाग गए तो फिर जिस घर का मालिक खोया है उस घर में चोरा के, जिस घर का मालिक जाग रहा है चोरा के डरते, और आ भी गए और देख लिया मालिक जाग रहे तो भगे, इसीलिए यही बात हमारे मन की है, हम भीतर से जागते रहेंगे विकार अंदर आने नहीं पाए, भूले चूके आ भी गए तो किसने नहीं पाए, भागना पड़ेगा उनको, और ये विद्या पूरी पुरानी भाषा में विपश्यना कहते, पश्चना माने देखना, विपश्यना माने साक्षी भाव से देखना, सतस्थ भाव से देखना, भोग का भाव से रहें, गुस्सा आया उसे भोगने लगे तो गुस्से बोल रहेंगे, गुस्सा आया उसे साक्षी भाव से देखने लगेंगे, अच्छा भाई ये गुस्सा आया है तुझे भी देखे तो कब तक रहता है, तुझे भी देखे तो कब तक रहता है, देखे तो तुझे, और देख गुस्सा आया तो हमारे शरीर पर क्या होने लगा इसको भी देखते हैं, तो देखेगा धड़कन बढ़ गई, देखेगा तनाव बढ़ गया, या देखेगा कि होंठ कांपने लगे, आंख लाल होने लगी, मुंह लाल होने लगा, होने लगा सांस तेज हो गया, इसको भी देख, इसको भी देखता है, और ये देखते 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 गुस्सा ठंडा हो गया, भाग गया,
चोर को देख लिया ना, चोर घर में आ गया तो देख लिया, वो किसी बार जागना ही पड़ेगा।
तो भाई ये जागृति भीतर की जागृति ये नहीं आएगी तो विकारों से छुटकारा नहीं होगा,
और विकारों से छुटकारा नहीं होगा तो मन को हजार कंट्रोल कर ले, यदि बार बार ये विकार जाग करके सारा कंट्रोल तोड़ देंगे हमारा,
हमारा कंट्रोल काम नहीं आएगा
और फिर सदाचार का जीवन जी नहीं सकेंगे, चाहे तो भी नहीं जी पाएंगे।
तो पहली बात धर्म ये कि शील सदाचार का जीवन जी, दूसरी बात ये कि शील सदाचार का जीवन जीने के लिए मन को वश में करना सीख,
और तीसरी बात मन को सही ढंग से वश में करने के लिए मन को निर्मल करना सीखें,
उसके विकार दूर करें। सांस को देखते देखते
अपना सारा शरीर में क्या हो रहा है इसका दर्शन होने लगेगा, अपने चित्त में क्या हो रहा है इसका दर्शन होने लगेगा। जब और आगे बढ़ जाता है आदमी इस साधना से एक वैज्ञानिक की तरह देख रहा है, जैसे रिसर्च स्कॉलर एक साइंटिस्ट रिसर्च का होता है, वो देखता है कि ये क्या प्रपंच है, क्या फिनोमेना है, हमारे माइंड और मैटर में क्या होता है, तो देखता है जैसे बाहर से किसी ने कोई अप्रिय बात कह दी, कोई अप्रिय काम कर दिया और देख हमको बड़ा बुरा लगा, बुरा लगते हमने विकार जगाया। अब क्या हुआ, विकार जगाते ही शरीर में एक बायोकेमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गया, गर्मी बढ़ी, धड़कन बढ़ी, कि कोई ऐसा प्रवाह चला, केमिकल प्रवाह चला हमारे रक्त के साथ, हम बड़े व्याकुल हुए और जितने व्याकुल हुए उतना विकार बढ़ाया हमने, मानो हमको गुस्सा, किसी ने गाली दी तो बाहर की घटना हुई, हमारे भीतर क्या होने लगा, उसने गाली दी हमको बुरा लगा, बुरा लगते ही हमने विकार जगाया, क्रोध जगाया, क्रोध जगाते ही हमारे भीतर ऐसा एक बायोकेमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गया कि हमारे रक्त की धमनियों, रक्त की शिराओं में रक्त के साथ साथ एक केमिकल ऐसा बहने लगा, पुरानी भाषा में उसको कहते थे आश्रव बहने लगा, कुछ बहने लगा हमारे शरीर में, कुछ बहने लगा, वो क्या बहने लगा, जो बहने लगा उस चीज में व्याकुल बनाया, हमने क्रोध किया तो इस तरह का केमिकल बहने लगा जिसने हमको बहुत व्याकुल बनाया। क्रोध भी करे और व्याकुल नहीं हो असंभव बात है, कोई आदमी क्रोध करे और क्रोध करते हुए उसको बड़ी शांति मालूम होती है, बड़ा सुख होता है, अरे क्रोध भी ज्यादा होते कितना सुख मालूम होता है, पावली बात हो नहीं सकता, अरे क्रोध जाएगा तो ऐसा केमिकल तेरे भीतर बहेगा तो उसको व्याकुल बना देगा, तो हिंदू है तो भी बना दे, तो मुसलमान है तो भी व्याकुल बना दे, तो जैन है कि बौद्ध है कि ईसाई है, कुदरत इस बात को नहीं देखती, प्रकृति इस बात को नहीं देखती कि इस आदमी ने अपने माथे पर क्या नाम लिख रखा है, हिंदू का बिल्ला लगा रखा है कि मुसलमान का बिल्ला लगा रखा है, कि सिख का, कि जैन का, कि बौद्ध का, कि ब्राह्मण का, कि शूद्र का, क्या बिल्ला लगा रखा है, कुछ नहीं देखती, क्रोध जगाया है ना तुरंत दंड दे, क्रोध जगाती ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू होगा व्याकुल हो जाएगा, और एक और पागलपन शुरू होगा कि जैसे ही वो बायोकेमिकल हमारे अंदर होने लगा और व्याकुल हुए हमने और क्रोध जगाया, हमने और क्रोध जगाया वो और बायोकेमिकल बहने लगा, वो बायोकेमिकल और बढ़ा हमने और क्रोध जगाया, और ये जीत के सर्कल चल पड़ा, ये दुष्चक्र चल पड़ा, हम तो क्रोध ही क्रोध करते चले जाएंगे, जिस आदमी ने गाली दी उसने तो एक बार गाली दी और चला दी गया, वो तो भूल भी गया होगा, हम नहीं भूलते ना, हम क्या करते हैं, उसने तो हमको एक बार व्याकुल बनाने के लिए गाली दी, हम एक बार भी व्याकुल हुए ये भी अपनी मूर्खता जीत पर हो गए, एक बार तो व्याकुल हो गए, अब घंटों व्याकुल रहे, अरे दिनों व्याकुल नहीं थी, वर्षों व्याकुल नहीं, दूसरी गाली दी थी, सब गाली दी थी, ऐसा अपमान किया, जन्म भर नहीं भूलूंगा, बदबू जन्म भर किसको एहसान करता है, जन्म भर नहीं भूलेगा, जन्म भर व्याकुल रहेगा, कर क्या रहा है, तो होश नहीं है ना, अपने भीतर देखता नहीं कि जब जब उस घटना को याद करके मैं क्रोध जगाता हूँ तब तक ऐसा एक बायोकेमिकल, ऐसा एक आश्रव अपने भीतर बहाने लगता हूँ, ऐसा एक केमिकल बहाने लगता हूँ जिससे और क्रोध जागता है, और क्रोध जागता है, और आश्रव बहता है, और घंटों व्याकुल रहता हूँ, घंटों व्याकुल, ऐसी वासना जागती, किसी व्यक्ति को देख करके वासना जागी, वासना जागते ही ऐसा एक बायोकेमिकल अंदर रिएक्शन शुरू हो जाएगा, ऐसा आश्रव रहने लगेगा कि और वासना जाएगी, और वासना जागेगी और वैसा बायोकेमिकल जागेगा, और बायोकेमिकल जागेगा और वासना जागेगी, आश्रव जाग रहा है और विकार जाग रहा है, विकार जाग रहा है, आश्रव जाग रहा है, हम व्याकुल ही व्याकुल होते चले गए ना, कोई विकार ऐसा नहीं है,
कि जिसका हमारे शरीर पर असर न पड़े, जिसकी वजह से कोई आश्रय हो, कोई केमिकल रिएक्शन हमारे अंदर न होने लगे, ये कुदरत के बंधे बंधाए नियम है जो सब पर लागू होते हैं। हमारे देश के बड़े बड़े ऋषि कितने ऋषि कहे गए, जिन्होंने रिक्त का दर्शन किया वो ऋषि कहलाए। कुदरत का कानून क्या है उसको रिक्त कहते, ऐसी प्रज्ञा भीतर जगाई, विषम भरा प्रज्ञा, जो रिक्त को जानती है, कुदरत के कानून को जानती है, लॉ को जानती है, नेचर को जानती है, ऐसा ऐसा होगा तो भाई ये परिणाम आएगा ही। दो हिस्से का हाइड्रोजन और एक हिस्से का ऑक्सीजन मिलेगा तो पानी बन ही जाएगा। इसमें हिंदू बनेगी क्या बात, इसमें बौद्ध बने की बात क्या, इसमें जैन बनेगी कि ईसाई बनेगी, रहे ना हिंदू अपना हिंदू रहे, बौद्ध अपना बौद्ध रहे, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेंगे तो पानी बन ही जाएगा। ऐसे ही हमने कोई विकास जगाया और केमिकल जाएगा उससे जैसा तो हम जाते हो ही जाएंगे, रहे ना हिंदू हिंदू रहे, बौद्ध बौद्ध रहे, जैन जैन रहे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं मिलेंगे पानी नहीं बनेगा, हिंदू रहे बौद्ध रहे जैन रहे ईसाई रहे क्या फर्क पड़ गया। हम विकास नहीं कराएंगे, ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होने देंगे, हम व्याकुल नहीं होंगे, हम बड़े शांत रहेंगे, बड़े सुखी रहेंगे। तो भाई ये करने के लिए कोई अभ्यास करना पड़ता है, छोटे से छोटा काम भी बिना अभ्यास के नहीं होता। किसी बच्चे को सोच सकते कि साइकिल पर चढ़ा दो कोई चलाएगा बेचारा, अपना संतुलन नहीं रख पाएगा, कभी इधर गिरेगा कभी उधर गिरेगा, तो सकते भी साइकिल है ना, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते ऐसा चलाएगा कि हाथ छोड़ के चलाएगा। आप तो ठीक है, किसी को पानी में छोड़ो तैरना सिखाओ, अरे आपने पानी दिया आपने पानी दिया, हारे रहे मरा रहे मैं तो डूबा रहे, और यूँ करते करते यूँ तैरने लगा, नदी रही समुद्र भी पार कर जाए इतना तैरने लगा। अभ्यास करना होता है ना, अरे मन को विकारों से विमुक्त करना है और भीतर कई सुख शांति प्राप्त करनी है, और वो किसी की कृपा से हो जाएगी, गुरु महाराज की कृपा से हो जाएगी, अल्लाह मेरी कृपा से हो जाएगी, हमको कुछ नहीं करना, हम कुछ नहीं करते भाई, कोरे के कोरे रह जाओगे, कुछ नहीं होगा प्राप्त, कुछ नहीं होगा, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और तरीका मालूम हो तो पुरुषार्थ अपना फल सत्कार के लिए लगता है। स्कूलों में बच्चों को केवल पहला पाठ सिखाया विपश्यना का, तुम केवल सांस देखना सीखो, सुबह शाम बच्चे थोड़ी थोड़ी देर 10-15 मिनट केवल सांस देखना सीखे, दो चार छह महीने में रिजल्ट आने लगे, बच्चे बड़ा परिवर्तन आने लगा, उनके माता पिता देखने लगे हमारे बच्चे में बड़ा परिवर्तन आया। कुछ बच्चे आते हैं जयपुरी में 3 दिन का शिविर लगता है केवल सांस सीखने का, और उसके बाद जितने रोज सुबह शाम करते हैं बड़ा परिवर्तन आने लगा, पढ़ाई में तेज हो गए, कौन सबसे तेज हो गए, उनकी याददाश्त बड़ी तेज हो गई, उनमें जो नर्वसपना था वो निकल गया। बच्चे ने साल भर खूब मेहनत की है, अपने विषय को अपने शब्द को खूब समझ गया है, उससे चाहे जब पूछ लो अपना कुछ आगे बोल देगा, लेकिन जब परीक्षा देने के लिए बैठा एग्जामिनेशन में गया तो नर्वस हो गया, वो पेपर भूल के नर्वस हो गया, सब भूल भाल गया, तो जवाब नहीं देकर आया या गलत तरीके से देकर आया तो पास नहीं हुआ, या फिर पास भी हुआ तो बहुत कम नंबरों से पास हुआ। तो क्यों भाई, पढ़ाई तो उसने बिल्कुल ठीक की थी ना, तो कमी क्या रह गई कि उस बेचारे को नर्वस नहीं होना चाहिए सिखाया नहीं है। चाहिए को तो सबने कहा नर्वस मत हो जाना, देखो तुम एग्जामिनेशन में जाओ ना तो नर्वस मत हो जाना, अरे मत हो जाना तो कहते हो कैसे मत हो जाना, ये तो सिखाया नहीं ना किसी ने। उसी बच्चे को ये सिखाया जाए कि तुम रोज सुबह शाम 10-10 मिनट जो सांस देखते हो ना, पर्चा खोलने के पहले आँख खोले खोले ही थोड़ी देर अपनी सांस को देखो, 5 मिनट देखो बस, फिर पर्चा खोलो, जरा सा नर्वस करने का नामो निशान नहीं रहेगा, बल्कि जो बात भूल गए थी उसका भी याद आ जाएगी, बहुत अच्छा पर्चा करके आएगा, उन बच्चों के एग्जाम लिखने रिजल्ट अच्छे आने लगे। अरे जीवन में भी तो जो हमारे भीतर हीन भावना होती है हमको कितना नर्वस बनाती है, बहुत पढ़ लिख लिया, एमए कर ली, डॉक्टरेट कर ली, ये कर ली, हीन भावना नहीं निकली, किसी बड़े आदमी के पास जाता है तो भीतर भीतर कांपता है, तो कैसे सफल होगा जीवन में, हीन भावना निकलनी चाहिए ना, उसका नर्वस बना निकलना चाहिए ना। अरे इतनी बड़ी विद्या हमारे देश के पास, ये सारी हीन भावना निकाल देते हैं इनके लिए, सारी विकार निकाल देते हैं इनके लिए, बचपन से सिखाई जानी चाहिए ना। तो देखा जिन जिन स्कूलों में बड़े उत्साह के मारे
इन विपक्षना के सह आचार्यों ने सहायक आचार्यों ने जाकर के आना पान झिका बिगड़े उत्साह के मारे और उन स्कूलों के किसी अध्यापक ने साधना की नहीं, उस स्कूल के मैनेजमेंट के किसी आदमी ने साधना की नहीं, तो बच्चे बेचारे दो चार महीने तो करते रहे, फिर छोड़ कर दिया। कोई करता ही नहीं ना, हम क्यों करें? कोई करता ही नहीं, हम क्यों करें? और जिस जिस स्कूल स्कूल के टीचर भी विपक्षना करने वाले हों, उसके मैनेजमेंट के लोग भी विपक्षना करने वाले हों, और जिस परिवार में माता पिता भी विपक्षना करने वाले हों, हम देखते हैं उन बच्चों का कैसा बड़ा कितना बड़ा उत्थान होने लगा, कितनी उन्नति होने लगी। अब क्षेत्र में अध्यात्म में जहाँ आदमी पता है फिर तो सारे क्षेत्रों में उन्नति करता चला जाएगा। अध्यात्म में कमजोर है, अपने मन का मालिक नहीं है, अपने मन विकारों से भरा हुआ है, कैसे खुशी होगा दुखी होगा ना? तो बचपन से ही ये विद्या सिखानी चाहिए। हिंदू भी कर सकता है, जैन भी, बौद्ध भी, ईसाई भी, मुसलमान भी, इन बिल्कुल सेकुलर मान करके ये किसी संप्रदाय के साथ नहीं जुड़ी हुई। प्राण देखना है भाई, और भीतर शरीर और चित्त पर क्या होने लगा इसको देखना है भाई, ताकि हम विकारों से मुक्त हो जाए। काम ये करना है, इसमें हिंदू बना क्या कहेगा, बौद्ध बना क्या कहेगा, जैन बना क्या कहेगा, रहे हिंदू अपना हिंदू को हिंदू कहते रहे, बौद्ध बौद्ध कहते रहे, जैन जैन कहते रहे, अपने व्रत उपवास उसी तरह मनाते रहे, अपनी पूजा पाठ उसी तरह करते रहे, अपने और कुछ जो मान्यताएं हैं दार्शनिक मान्यताएं उनको मानते रहे, पर ये काम तो करें, अपने मन को वश में करना सीखें, अपने मन को निर्मल करना सीखें। तो बच्चों में ये बात जानी बहुत जरूरी है। एक समय था भारत का, कोई 2000 वर्ष पुरानी बात है, बाहर से कोई विदेशी इस देश में घूमने के लिए आया और सारे देश की यात्रा करते हुए उसने देखा कि पनघट पे जाकर के वो देखता है कि यहाँ की औरतें आपस में क्या बात करती हैं। तो देखता है वो लिखता पुस्तक के बाहर भी, वो देखता है कि यहाँ की औरतें पनघट पे बात ही करती है। अरे तेरी विपश्यना साधना कैसी चल रही है रे, कहाँ तक अनुभूति हुई तुझे, कैसी अनुभूति हुई? शाम को किसी चौपाल में चले जाता है, वहाँ बड़े बूढ़े बैठे गप लगाते हैं, तो वहाँ बैठ के सुनता हूँ उनकी बात, क्या बात करते हैं, क्योंकि वही बात करते हैं, तेरी विपश्यना कैसी हो रही है रे, तुझे क्या कठिनाई आ रही है विपश्यना में, तुझे क्या लाभ हो रहा है विपश्यना का। अरे सारे देश में यही चर्चा, और कहता है लिखता मैं जिस घर में चला जाऊँ उस घर में एक दिन दो दिन मेहमान रहूँ तो घर का मालिक और मालकिन ही नहीं, घर के नौकर से आकर दास दासी भी और घर के बच्चे भी सब सुबह शाम बैठे विपश्यना करते हैं। और ऐसी देश की हालत उस समय देश इतना धनवान, इतनी समृद्धि को ठिकाना नहीं और इतनी शांति। आज तो पश्चिम को इसलिए देखते हैं जिसके पास समृद्धि है, शांति नहीं है। कभी भारत को लोग इसलिए देखते थे जिसके पास समृद्धि भी है और शांति भी, दोनों बात है। तो ऐसा भारत फिर बने, ऐसा भारत बनने के लिए नई पीढ़ी को धर्म देना होगा। हिंदू धर्म नहीं, बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म, ताकि शरीर और वाणी से कोई दुष्कर्म करना छोड़, उनको अपने मन को वश में करना सिखाना है और शुद्ध साध के सहारे अपने मन को वश में करना सीखे, उनको अपने मन को निर्मल करना सिखाना है और अपने शरीर और चित्त को दृष्टा भाव से देखते देखते विकारों से मुक्त होना सीख जाए। बड़ी विद्या उनको प्राप्त हो गई, बहुत बड़ी अध्यात्म विद्या प्राप्त हो गई, बड़ा कल्याण हो गया। लेकिन बच्चों में ये बात फैलाने से पहले फिर एक बार कहूँगा, जो गृहस्थ आए हैं अगर वो खुद नहीं करेंगे और चाहेंगे मेरा बच्चा तो सच बोले पर मैं तो झूठ ही बोलूंगा, मेरा बच्चा शराब नहीं पिए पर मैं तो शराब ही पीऊंगा, मेरा बच्चा जुआ नहीं खेले पर मैं तो जुआ ही खेलूंगा, तो भाई बच्चे तुम्हारे कर्म को देख के उसी तरह का कर्म करेंगे, तुम्हारी वाणी को सुन करके उस मानने वाले नहीं। पहले स्वयं करना सीखे, भारत में ये भारत की पुरानी विद्या फिर जाग गई, धर्म की गंगा फिर बहने लगी। अपने जीवन के 10 दिन इस धर्म की गंगा में डुबकी लगाने के लिए निकालना चाहिए, अपने बच्चों के भले के लिए ही नहीं, अपने परिवार के भले के लिए ही नहीं, अपने भले के लिए। जो आदमी अपना भला नहीं कर सका वो अपने परिवार का भला नहीं कर सकेगा, वो अपने बच्चों का भला नहीं कर सकेगा। तो पहले अपना भला करने के लिए अपने जीवन के 10 दिन लेने होंगे और फिर धीरे धीरे परिवार के अन्य लोग भी इस गंगा में डुबकी लगाने लगेंगे, बच्चों को भी ये विद्या मिलने लगेगी, घर में बड़ी सुख शांति आने लगेगी, घर में समृद्धि भी आए,
हम नहीं कहते कि परिवार कंगाल रहे, हम नहीं कहते कि देश कंगाल हो, खूब समृद्धि हो, लेकिन उसके साथ साथ खूब शांति होगी, चित्त की निर्मलता हो, जीवन आदर्श जीवन हो। लोग हमारी ओर देखें कि ये भारतीय हैं, देखो कितना अच्छा जीवन जीते हैं। 2000 वर्ष पहले यही हालत थी भारत की, लोग भारतीयों से वो देखते थे कितने अच्छे जीवन जीने वाले हैं। आज कोई ऐसा नहीं देखता भारतीयों की ओर। बाहर फिरता हूँ जगह जगह तो खूब जानता हूँ कि भारतीयों को कई दृष्टि से देखते हैं, बातें बहुत करते हैं अध्यात्म की, इनके जीवन में अध्यात्म नहीं है, ऐसा सब जानते हैं। अपने जीवन में अध्यात्म आए इसके लिए मेहनत करनी सीखे, परिश्रम करना सीखे, जीवन के अपने दक्षिणों का त्याग करना सीखे। बच्चों को भी विद्या सिखानी है उसे पहले खुद सीख, खुद सीख करके स्वयं ध्यान करने लगे, बच्चों को साथ बैठा के ध्यान करने लगे, देखें बहुत बड़ा प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। विद्यार्थियों को सिखाने के पहले जो स्कूल के टीचर हैं वो स्वयं ध्यान करने लगे, फिर बच्चों के साथ 10 मिनट बैठ के ध्यान करें, देखें कितना बड़ा फर्क आने लग गया। भारत अध्यात्म देश है, इसमें तो अध्यात्म जागना ही चाहिए, केवल बातों वाला अध्यात्म नहीं जागे, वो तो बहुत जाग गया, अब करने वाला अध्यात्म जागे। अध्यात्म शब्द का अर्थ ये कि अपने भीतर की सच्चाई को स्वयं देखना, वो अध्यात्म कहा जाता है। तो अपने भीतर की सच्चाई को स्वयं देखना की, देखने की ऐसी अनमोल विद्या भारत की, ऐसी वैज्ञानिक विद्या, ऐसी संप्रदायहीन विद्या, किसी संप्रदाय में बंधने की जरूरत नहीं, किसी में कन्वर्शन होने की जरूरत नहीं, हम जो है वो है, लेकिन अपने मन को निर्मल रखेंगे, अपने मन को वश में रखेंगे, अपने शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके अन्य प्राणी की सुख शांति भंग हो। बस ऐसा जीवन जरा जरा सा भी आना शुरू हुआ तो उसने उतने धार्मिक बनने लगे। हिंदू है तो धार्मिक हो गया, मुसलमान है तो धार्मिक हो गया, ईसाई है कि सिख है कि बौद्ध है कि जैन है, धार्मिक हो गया। ज्यादा ज्यादा जीवन में आने लगी, बहुत धार्मिक हो गया, पूर्ण धार्मिक हो गया। इसकी पढ़ाई अपने घरों में शुरू कर, पाठशालाओं में शुरू करें, बड़ा मंगल होगा, बड़ा कल्याण होगा। आज की धर्म सभा में सब गृहस्थ आए हैं, माता पिता आए हैं, और सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारे जीवन, हमारे बच्चों का जीवन बड़ा उज्जवल हो, उनका जीवन बहुत सुख शांति से बीते। तो साथ साथ ये भी कि हमारा जीवन भी सुख शांति से बीते, हम उनके सामने एक आदर्श रखें कि अपने मन को कैसे एकाग्र किया जा सकता है, अपने मन को कैसे निर्मल किया जा सकता है। देख मैं भी ऐसा करती हूँ, तुझे करके भी देख, मैं भी ऐसा करता हूँ तुझे करके देख। हम करेंगे घंटे भर बच्चे से कराएंगे, 10 मिनट बहुत, देखेंगे उसका असर आने लगा। हम नहीं करेंगे, 1 मिनट भी बच्चे से कहेंगे तू तो कर 10 मिनट, होने वाला नहीं, चलेगी नहीं बात। तो अच्छी तरह से धर्म को समझ करके, हिंदू धर्म अलग, बौद्ध धर्म अलग, जैन धर्म अलग, ईसाई धर्म सारी अलग, लेकिन धर्म तो एक ही, धर्म अलग अलग नहीं होता, संप्रदाय अलग अलग होते हैं, तो एक ही धर्म है। शरीर और वाणी से दुष्कर्म नहीं करना, ये एक ही धर्म है। मन को वश में कर लेना, ये एक ही धर्म जो सबका धर्म है। मन को निर्मल कर लेना, ये एक ही धर्म जो सबका धर्म है। बस उस धर्म को धारण करने की इतनी सरल विद्या, इतनी वैज्ञानिक विद्या, इसे आजमा के देखो। आज आए हैं धर्म की बात सुनने के लिए आए हैं, इसका मतलब सब ये धर्म का बीज है। धर्म का बीज तो है, लेकिन वो विकसित नहीं हुआ, वो फूला नहीं, वो फला नहीं। अरे तो खाली बीज ही लेकर के सारा जीवन बिता देंगे, धर्म का बीज तो भीतर रहेगा, उसको विकसित नहीं होने देंगे तो काम की बात नहीं है। तो जो लोग आए हैं सब धर्म का बीज है, नहीं तो आता नहीं। आज तो संडे है ना, सिनेमा जाएंगे, वीडियो खेलेंगे, देखेंगे, अमुक करेंगे, अमुक करेंगे, कोई नहीं आता। तो जो जो आए हैं इस बात का प्रमाण है, इस बात की सबूत है कि सबके भीतर धर्म का बीज है। अरे भाई, अब उस धर्म के बीज को विकसित करो, खूब फूले, खूब फले, स्वयं भी सुख शांति भोगे, अपने परिवार में भी खूब सुख शांति आए, अड़ोस पड़ोस में खूब सुख शांति आए, सारे समाज में खूब सुख शांति आए, सारे राष्ट्र में खूब सुख शांति आए, सारे विश्व में खूब सुख शांति आए। ये भारत की अनूल संपदा, सुख शांति की संपदा है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति मिले, सुख शांति मिले।